अनंतकोटिवैष्णवंड की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की गौर प्रेमानंदे सब कठे भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कठे भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कठे भक्तों की जय हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु अन गौरंगा की जय। प्रेम ध्वनि पूरी हो जाने के बाद प्रणति मंत्र पढ़ना चाहिए, उतनी देर तक प्रणाम में रहना चाहिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेश नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। दीपावली की सबको शुभ बधाई हो। श्री श्री राधिका रमण श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान पंजाबी बाग की ओर से आपका सबका स्वागत है प्रातः काल के भागवत के सत्संग में। भागवत का मतलब भगवान के समान, भागवत जो भगवान के समान है। प्रति अक्षर प्रति शब्दे कृष्ण गोपीय रंग, हर एक भागवत के अक्षर में और हर एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण का अपने परम प्रेमी भक्तों के साथ जो संबंध है उसका ही वर्णन है। भागवत में क्या है, भगवान और भगवान के भक्त इन दोनों का वर्णन है विशेष रूप से। भागवत है श्री कृष्ण का अंग, महाप्रभु कहते हैं भागवत भगवान श्री कृष्ण के अंग है, भगवान से भिन्न नहीं है कृष्ण से। और भगवान और भगवान के भक्तों का जो अंतरंग आपस में संबंध है उसको दर्शाती है। तो बहुत ही अंतरंग लीलाएं भागवत में भगवान के अपने भक्तों के संग में है, लेकिन कुछ लीलाएं विशेष जो इस महीने में घटित हुई हैं कार्तिक के महीने में, दो प्रमुख लीलाएं हुई हैं। एक दिवाली के दिन आज के दिन हुई है, भगवान अपने भक्त के द्वारा प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं और भगवान का नाम दामोदर आज के दिन की लीला के उपरांत हो गया। और दूसरी भगवान की लीला जो आने वाला कल है उस दिन पे हुई थी, उस लीला में भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, और उस लीला के बाद भगवान का नाम हो गया गिरिधारी, गिरिधारी गोवर्धनधारी। तो दामोदर और गिरिधारी ये भगवान के दो नाम कार्तिक के महीने में जो लीलाएं ब्रज में हुई है उन्हीं के अंतर्गत हुए हैं। और दोनों लीलाएं बहुत अंतरंग लीलाएं हैं। आज की लीला में वात्सल्य प्रेम की परिकाष्ठा है। वात्सल्य प्रेम का मतलब है भगवान को अपना छोटा बच्चा समझना। भगवान हमारे बालक हैं, इस लीला की परिकाष्ठा है आज के दिन पे। इस लीला का वर्णन नवे अध्याय में आता है, दसम स्कंद का नवा अध्याय। आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा को मुख में विश्व रूप दिखाया, मिट्टी खाई थी और कहा मुख खोलो तो विश्व रूप देखा। फिर बहुत ही जल्दी मानो दो एक दिन में दूध पीते हुए जमाई ली भगवान ने तो अंदर विश्व रूप देखा। तो माँ जरा भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित हो रही थी कि ये कोई गर्ग मुनि कह रहे थे कोई बड़ा विष्णु के समान देव पुरुष तो नहीं है, ऐसे मन में थोड़ी देर के लिए ऐसे अंदर स्पार्क हुआ, भगवान तो अंतर्यामी देखा ये मेरी माँ का स्नेह कम हो जाएगा, ये मेरे को अगर ऐश्वर्यमय मानेगी तो। भगवान ने कहा ऐसी लीला करनी चाहिए जिससे माँ मान ले कि मैं छोटा सा बच्चा हूं और मैं उसके ऊपर बिल्कुल आश्रित हूं और वो ही मेरा पालन पोषण करती है, तब मैं चल सकता हूं, नहीं तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं उसके बगैर। मैं उनका बस बालक हूं, वो मेरे को मां ऐसे मान ले, उसका आज्ञाकारी हूं, वो कहेगी तो मैं नहीं मानूंगा तो मां मुझे डांटेगी। तो ये भाव प्रकट करने के लिए भगवान ने आज के दिन ये लीला की है। ये श्लोक लिखा है, श्लोक तक आने से पहले 23 श्लोक है केवल इस अध्याय में, नवे अध्याय में 23 ही श्लोक है। और बोलना शुरू करते हैं सुखदेव महाराज, अध्याय का आरंभ कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच, महाराज परीक्षित बैठे हैं सामने, लेकिन अकेले महाराज परीक्षित कथा नहीं सुन रहे हैं। ब्रह्मांड से केवल इस धरती से नहीं, ब्रह्मांड से ऋषि आए हुए हैं, नारद भी बैठा है, व्यासदेव भी बैठा है, सुखदेव का पिताजी, अगस्त, अंगीरा आदि ऋषि बैठे हैं, बड़ी ऋषि समुदाय बैठी हुई है। ये श्लोक कहने में बहुत बड़ा संदेश है कि सभी जो वहां ऋषि आए थे, अगस्त ऋषि अगर वहां बैठा है तो वो शिव भक्त है। कई ऋषि ब्रह्मज्ञानी है, केवल जानते आते तो सब भगवान के पास है, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और ही होता है। तो ये लीला पांचवा दिन परीक्षित महाराज को कथा सुनते हुए पूरा हो गया, ये पांचवा दिन चल रहा है कथा सुनते सुनते। तब ये थोड़ी अंतरंग लीलाएं प्रकट करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक दिन ऐसे हुआ। इसका अर्थ ये है कि प्रतिदिन ऐसे नहीं होता था, एक दिन ऐसे हुआ। बोला क्या हुआ? ग्रह दासी शु, जो घर में काम करने वाली स्त्रियां थी, यशोदा माँ ने उसको क्या किया, यशोदा नंद गृहिणी, नंद के घर की रखवाली करने वाली नंद रानी यशोदा ने उनको क्या किया, दूसरे काम में लगा दिया। यह शब्द लिखा है कर्म अंतर नियुक्तासु, अंतर मतलब दूसरा कोई काम, जो एक विशेष काम पहले वो करती थी उससे उसको हटा के आज अन्यंतर काम में लगा दिया। तो पहले क्या काम करती थी, पहले वो दही का मंथन किया करती थी, मक्खन निकाला करती थी, लेकिन आज उनको उस काम से निवृत्त कर दिया, दूसरे काम में लगा दिया। क्यों लगा दिया दूसरे काम में? इसके तीन भाव लिखे हैं। एक भाव तो यशोदा के मन में ये आया कि रोज शिकायत आती है गोपियों की कि हमारे घर में मक्खन खाता है, तो क्या हमारे मक्खन में स्वाद नहीं है, ये ठीक नहीं बनाती हैं, तो इस स्नेह तो नहीं डालती होंगी ना, ये दासियां तो है ना, अपना प्रेम थोड़ी डालेंगी जब काम कर रही, जब काम मक्खन बनाएंगी कृष्ण के लिए तो कृष्ण का चिंतन तो नहीं करेंगी ना, तो उनका भाव तो मक्खन में नहीं आता होगा ना, तो माँ का भाव जैसा आएगा ऐसा तो नहीं आएगा ना, तो मैं खुद ही आज मंथन कर लूं, इनको दूसरे काम में लगा देती। ये मुख्य भाव यशोदा के मन में आया है आज। दूसरा क्या भाव है? दूसरा भाव यह है कि कल इंद्र की पूजा होने वाली है, ब्रज में बहुत बड़ी पूजा होती थी इंद्र की दिवाली के दूसरे दिन, तो बहुत बड़ा उत्सव घर में है, तो अनाज और सामग्री पूजा की तैयार करनी है, तो इनको उस काम में लगा देती है, परिश्रम का काम है, तो ये घर में बैठी बैठी मैं ये काम कर लेती हूं। और तीसरा कहीं ऐसा भाव भी है कि दिवाली का दिन है तो सब सेवा करने वाले छुट्टी मांगते हैं, भाई अपने घर जाना है, आज दिवाली है ना, दिवाली के दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, आज तो छुट्टी दीजिए। तो ये तीन भाव भिन्न प्रकार से प्रकट किए गए हैं, लेकिन मुख्य भाव ये मानना चाहिए कि माँ ने कहा मैं मेरे वात्सल्य प्रेम से स्वयं आज, क्योंकि पीछे वाले श्लोकों से ये ध्वनित हो रहा है कि वो अपने वात्सल्य प्रेम के द्वारा बहुत विशेष ही कोई ऐसा मक्खन तैयार करना चाहती थी जो खाने के बाद कृष्ण किसी और के पास नहीं जाए, किसी और के घर में नहीं जाए। मां का भाव ये था, अंतरंग भाव ये था। तो क्या करने लगी, उनको दूसरे काम में लगी, स्वयं क्या करने लगी, निर्मंथ स्वयं दधी, आज स्वयं दही को मंथन करने लगी। लोगों ने नहीं देखा हो तो दूसरी बात है, अगर देखा हो तो दही को मंथन करने के लिए मानंद बाबा की 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय में से केवल 7-8 गाय छांट के अलग रखी थी कि इसका दूध ही केवल कृष्ण को पिलाया जाएगा। उन गायों को विशेष घास, विशेष औषधियां और विशेष दूध दूसरी गायों का भी पिलाया जाता था कि इनका दूध सुगंधित हो, पौष्टिक हो और दिव्य हो। और उस गाय का नाम भी पदम गंधा गाय थी। गायों के बहुत युद्ध थे। कृष्ण के पास भी एक माला होती थी लेकिन हरे कृष्णा नहीं जपता था, गायों के नाम जपता था। गोरी आई, धौली आई, सांवली आई, नहीं आई अभी, तो एक एक गाय को भगवान जानता था बहुत निकट से। तो आज उस पदम गंधा गाय का दूध रात को मां ने गर्म किया, गर्म करने के बाद उसके पास बैठ के उसको ठंडा किया, उसमें जामुन डाला। ये थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है, कार्तिक महीना है ना, थोड़ी हल्की सर्दी शुरू होती है, दही जमेगा नहीं अगर ऐसे बाहर रख दिया जाएगा। गर्म ऊपर से कपड़ा ढाक के, कंबल ऐसे लपेट के, और बंदर वंदर घर में नहीं आए तो पुराने जमाने में हम कठोतरा कहते थे। कठोतरा क्या, एक लकड़ी का जैसे आज आपके ये समझ लीजिए कि 6 फुट बाय 4 फुट 5 फुट का ऐसे जिसमें हवा आ जा सकती हो लेकिन और कुछ नहीं जाए, उसका एक खिड़की छोटी होती थी, उसके अंदर ताला दे के रखते थे कि भाई कोई पशु, कोई भाई बंदर आदि, तो घर तो खुले होते थे ना, उसके अंदर ढक के रखते थे एक कोने में। और सुबह सवेरे 4 बजे उठना प्राय गांव के सब लोगों का नियम होता है। हम छोटे बच्चे थे, वो चौकीदार बाहर कहा होता ना, उसको माताएं कहती थी, वो ध्रुव तारा जब इधर आए तब हमको उठाना, वो 3 बजे का टाइम हुआ करता था। जिस दिन आटा पीसना होता था उस दिन 3 बजे बोलती थी, जिस दिन केवल मंथन करना होता था बोलती, फिर वो थोड़ा सा और नीचे जाए मतलब 4:15 बजे उठाना। उनकी घड़ी नहीं होती थी, वो तारे के हिसाब से ऐसे कहते थे। हम गांव में देखते थे कि जैसे आटा, क्या आटा रोज नहीं पीसती थी, आटा हफ्ते में 2-1 बार पीसती थी लेकिन दही तो रोज मंथन करना होता था। तो पहले पिराया आटा पीस के फिर दही मंथन किया करती थी, नियम उनका ऐसे हुआ करता था। तो माँ यशोदा 4-1 बजे उठी है, स्नान किया और एक श्लोक बीच में ये पहले आया है, उसके बाद के श्लोक में पहले यशोदा का दर्शन करते हैं। सुखदेव महाराज यशोदा का दर्शन करा रहे हैं कि कैसा यशोदा मंथन करने बैठी तब क्या कर रही है, लिख रहे हैं, बहुत सुंदर पीली और गेरुआ रंग की रेशमी साड़ी पहनी है, नई अंदर से निकाली है। ऐसे नहीं आनंद से उठी है, मुंह ही नहीं धोया, ऐसे ही जाके किचन में गई और देगड़ा चाय का ऊपर रख दिया। पुराने जमाने में रात के सोने के कपड़े और हुआ करते थे, वो कपड़े पहन के अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे, बाथरूम में जाने के कपड़े अलग हुआ करते थे स्त्रियों के, हमने देखे वस्त्र अलग हुआ करते थे, रात का सोया हुआ कपड़ा पहन के मुर्दे के ऊपर कपड़े के बराबर होता है, उसको पहन के बाहर आना मतलब मुर्दा घूम रहा है। अभी तक ये मर्यादा साधु समाज में है, साधु रात का जो कपड़ा पहन के सोता है सुबह उसी कपड़े के साथ नहाएगा, कपड़ा वो सुखाएगा फिर दूसरा पहनेगा, अभी भी ये मर्यादा है साधु समाज में है। रात को पहना हुआ कपड़ा
पहन के बाहर नहीं आया जाता है कभी भी। रात का मरे हुए इंसान के समान है, जब आदमी सोया हुआ है तो अपने किसी चीज का कोई भान नहीं रहता, बेटा पास में सोया है कि पत्नी है कि भाई है, नींद आने के बाद कुछ पता नहीं लगता है, तो मुर्दे के समान है वो। वो कपड़े नहीं पहने जाते, ये तो भूतों का समाज है, अब जो भी पहन के घूमू कौन मना करेगा आपको। माँ ने बहुत सुंदर पीली और गेरुआ रंग की साड़ी पहनी है, फिर ऊपर पट्टा बांधा है, ये पट्टा चांदी का हुआ करता था और उसके अंदर छोटे छोटे झुनझुने लगे हुए होते थे, तो चलने से ये कमर में क्या कहते हैं करधनी कहते हैं, कुछ और शब्द है, तो वो पट्टा बांधा माँ ने उठ के। और पट्टा बांधने के माँ ने क्या किया, हाथों में बहुत सुंदर डाले चूड़ियां, बहुत सुंदर चूड़ियां हाथों में डाली और बालों का जूड़ा बनाया, उसके अंदर ताजे फूल डाले। अपने घर में बगीचा हुआ था, नहा धो के बाहर गई तो पूजा के लिए फूल लाई होगी तो भगवान को अर्पण किया, फिर जूड़े में मालती के बहुत सुंदर सुंदर फूल डाले और क्या करने लगी, बैठी दही मंथन के लिए। पहले क्या है, कोई किलो दूध तो लेते नहीं थे बाहर वाले से, अपनी गायों का दूध था तो 10-1 किलो का दूध हुआ करता था, 10 किलो दूध का दही हुआ करता था, और वो मटका 10 किलो दही वाला मटका छोटा तो नहीं होगा, और उस मटके के नीचे उसके लिए मटके का आसन हुआ करता था, मटका अपने आसन पे बैठता था और माँ के लिए पेड़ा होता था, वो पेड़ा होता था ना उसके ऊपर बैठती थी, और बड़ी उम्र की माँ होती थी तो पेड़े के पीछे वो टेक होती थी, और अगर नौजवान होती थी तो बगैर टेक वाला पेड़ा होता था, नहीं तो टेक वाला पेड़ा चाहिए, माँ के टेक वाला पेड़ा लिया और उसके ऊपर बैठी और रस्सी दोनों की लिया हाथ में। अब शुरू करने से पहले क्या कर रही है, वो इससे पहले वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि क्या कर रही है अभी, यानी यानी ये गीतानी तद बाल चरितानी, कृष्ण के बाल चरित्र के जो गीत है वो मुझसे गाने शुरू किए। प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखते हैं कि पुराने जमाने में जिसकी याद हमारे को हर वक्त रखनी हो कि हर कोई किसी समय हमारे दिल से वो न भूले, तो उसकी कविताएं बना के सारा दिन गुनगुनाते रहते थे लोग। तो ऐसे लगता है कि कृष्ण के पूतना, तृणावर्त, सकटासुर, अघासुर वध की लीलाओं की सुंदर से गीत माँ ने बना के रखे थे और उनको गुनगुना रही थी। गीत गुनगुनाने से हमेशा हृदय में वो चीज बनी रहती है, और गीत गुनगुना रही थी, दधी का मंथन कर रही थी और साथ में चिंतन क्या कर रही थी, मनसा सुमरंती तान्य, और भगवान का सुमरण कर रही थी। अब तीन काम साथ कर रही थी, क्या, शरीर से भगवान के लिए दही का मंथन, मुख से भगवान की लीला का गान, और मन से भगवान का चिंतन। चिंतन क्या कर रही थी, थोड़ी देर सोया रहे ताकि जल्दी न जागे तो मैं काम निपटा लूं, नहीं तो काम करने नहीं देगा, उठेगा। एक पहला चिंतन ये आ रहा है, दूसरा चिंतन मन में क्या आ रहा है, आज तो मक्खन ऐसा बनाऊंगी, खाएगा कहीं भी नहीं जाएगा, और फिर मांगेगा, फिर मैं छुपा के रखूंगी, नहीं दूंगी। ऐसे मन में भाव आते हैं कि बच्चे को कैसे प्रेम, बच्चे का बढ़े माँ की प्रति, ऐसे मन में भाव आ रहे हैं, और ऐसे भाव मन में आ रहे हैं, मुख से गा रही है, और सुखदेव महाराज कहते हैं इतना दही ज्यादा है कि माँ जैसे सारा शरीर हिल रहा है, बड़ी परिश्रम कर रही है, पसीना सारे चेहरे के ऊपर पसीना आया है, और फूल भी कुछ जूड़े से नीचे गिरने लगे हैं, लेकिन माँ बहुत अभी उस काम करने में उसको थकावट नहीं हो रही है, क्योंकि लिखा है क्योंकि पुत्र का स्नेह है ना, अपने बेटे के लिए काम कर रही है ना, तो उसको थकावट का ऐसा, बहुत परिश्रम कर रही है। और इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद ने लिखा है कि जो वात्सल्य प्रेम के भक्त होते हैं वो यशोदा के इस रूप को देखें कि कैसी मां रूप धारण करके फिर पूजा करती। दो चार दिन पहले इसी प्रसंग में कहीं हम बोल रहे थे, शादी पार्टी में जाना होता है तो सबसे अच्छे कपड़े पहन के दुनिया को दिखाने जाते हैं और भगवान के पास आते हैं जो जैसे हो वैसे पहन के मुंह उठा के चले आते हैं। अरे भगवान के पास जाओ तो सुंदर बन के जाओ, उसको दिखाओ तुम्हारी सुंदरता। दुनिया को दिखाओगी तो दुनिया बुरी नजर से देखेगा, ये देखेगा तो तेरा उद्धार कर लेगा। सुंदर बनना चाहिए, बहुत सुंदर बन के भगवान के आगे जाना चाहिए, साफ सुथरा सुंदर हृदय भी उतना ही सुंदर। अगर बाहर शरीर सुंदर होगा तो अंदर भी थोड़ा सुंदर हो जाएगा, मन का भाव भी अच्छे हो जाएंगे। भगवान के काम करते हुए कितनी सुंदर मां सुबह सुबह सज धज के बैठी है। एक तो महात्मा पूछा कि सुखदेव वो स्वामी तो व्रत महात्मा है, स्त्री पुरुष में भेद भी नहीं है, लेकिन माँ को इतना नजदीक से देख रहा है कि उसके हिलने से छाती का भार, स्तनों का मातासी से बहुत बड़े परिश्रम, पसीना, कानों में कुंडल झुमक रहे, इतना नजदीक से क्यों देख रहा है माता जी को। किसी ने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी इतना नजदीक से माँ को क्यों देख रहे हैं, और दूसरा महात्मा कहता है ये जो देख रहा है ना, इस माता के पीछे जाएगा तो थोड़ी देर के बाद इसकी गोद में नहीं कृष्ण दिखाई देगा, इसके पीछे जाने से भगवान मिल जाएगा, इसलिए ऐसा इसका वर्णन कर रहा है। इसमें इसलिए इसकी आसक्ति बढ़ रही है क्योंकि ये भगवान की जननी है, इसकी गोद में भगवान आके बैठेगा अभी। और दुनिया की किसी स्त्री को देखोगे तो नरक में जाओगे, लेकिन भगवान के भक्त के पीछे जाओगे तो भगवान मिलेगा। अब जाके देखो इसके पीछे यशोदा के, थोड़ी देर रुक के देखो इसके पास आता है कि नहीं आता। तो उस मां की इसलिए प्रशंसा कर रही है कि इसकी गोद में थोड़ी देर में लाला आने वाला है, वो भी मेरे को देखने में आएगा, तब मैं देखने जाऊंगा लाला को, तब मेरा लाला के ऊपर ही चिंतन होना चाहिए, मां को पहले देख लेता हूं, लेकिन मां भक्त को ठीक तरह से सम्मान कर लूंगा तो फिर लाला भी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। भक्त का अपमान करके भगवान पा नहीं सकते। यशोदा माँ स्त्री नहीं देखना है मेरे को, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, करने तो इसको मंथन, जब कृष्ण आएगा देखूंगा। कृष्ण दूर से कहेगा तेरी आंखों में से अब मैं तेरी आंखों के सामने आने वाला ही नहीं हूँ कभी, मेरी माँ को नहीं देख रहा तो मैं क्यों तुम्हारे को दिखाई दूं। ये भाव ही है। तो भगवान के भक्त, एक बार रामानुजाचार्य किसी गाँव में गए, उनके अपने शिष्य थे शहर के अंदर बहुत से, एक भक्त को भेजा कि जाओ उस शिष्य को बताओ कि गुरु जी आए हैं। शिष्य ने बताया, बड़ा खुश हो गया, अरे गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, बहुत आनंद हो गया, बड़ा खुश हो गया। ये शिष्य वापस आया, बोला बताया, बोला हाँ बता के आ गया, बोला कैसे, बोला बहुत खुश हो गया, बोला एक दूसरा भी उसको भी बता दो जाके, दूसरे को बताया, महाराज जी गुरुजी आए हैं, बोला हमारा धन भाग है, लेकिन उसको पकड़ा, बोला तुम बैठो पहले यहां, गुरु का संदेश लाए हो ना, अरे गुरु को मिलाने के लिए तुमने हमको इतना अच्छा समाचार दिया, तू तो मीठा मुंह कर बैठ गया, पहले जलपान करके फिर जा। उसको बिठा दिया, वापस लौटा, रामानुजाचार्य ने पूछा सुनाओ इस शिष्य ने क्या बोला, बोला महाराज बहुत खुश हो गया, बोला खुश हो गया देर से क्यों आए, बोला मुझे भी बिठाया कि तुम संदेश लाए हो, प्रसाद खिलाया मुझे, बोला इसके घर चलेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, बोला क्यों, बोला वो मेरे को देख के खुश होता है लेकिन तुम्हारे देख के उसको तुम्हारा आदर नहीं किया, इसके घर में नहीं जाना है, जो तुम्हारा आदर किया है उसके घर में चलना है, जो मेरे भक्त का आदर करता है वो मुझे प्रिय है, उसके मेरे भक्त से स्नेह करेगा तो मुझे पाएगा। महत पद रज अभी से कम, भगवान मिलने का रास्ता ये है कि भगवान के भक्तों के प्रति बहुत अगाध स्नेह होना चाहिए, हृदय द्रवित होना चाहिए और हर समय उनकी सेवा के लिए मन में नए नए भाव अगर उद्धृत होते रहे तो ये भाव से सुखदेव गोस्वामी देख रहा है कि मां परिश्रम कर रही। अब आगता शब्द है, आगता, इतनी देर में भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मेरा कोई गुणगान करता है तो मैं वहां आ जाता हूं। भगवान ने कहा मैं मां गा रही है वह गोविंद गोपाल, और मैं यहाँ सोया रहूं तो लोग कहेंगे कि आपने कहा था जहाँ गाते हैं वहां आता है, तो मैं गया नहीं। अब यशोदा के गाने के ऊपर नहीं जाऊं तो फिर और किसके गाने के ऊपर जाऊंगा? यत्र गायंती मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, आपने कहा है ना नारद को, जहां मेरे भक्त गाते हैं वहां मैं जाता हूं। तो ये यशोदा गा रही है उधर नहीं जाऊंगा तो और किसी के घर में जाऊंगा क्या? ये तो प्रेम से गा रही है मेरे लिए, मेरे को जाना चाहिए ना। ये भाव उसके मन में, ये भगवान भी तो ऐसे ही करे ना। तो गोपियां गाती हैं जब रासलीला में भगवान बिछड़ जाता है, सब प्रयास थक जाती है, यमुना के किनारे के जाते फिर गीत गाने शुरू करती है। अरे उनको याद आ गया, यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि है ना, जहां गाते हैं वहां आता है ना, तो आज गाते हैं, गाएं तो तब तक कृष्ण आ गया उधर, ढूंढने से नहीं मिला लेकिन गाने से अपने आप आ गया। तो कीर्तन भगवान का प्रेम से गाते हैं तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। अब भगवान थोड़ी सो रहे थे, भगवान सो जाएंगे तो दुनिया में कौन हमारा पालन पोषण करेगा? वो तो ऐसे ही आंखें बंद करके, विष्णु तो हमेशा सोया हुआ आंखें बंद है फिर भी दुनिया चला रहा है, संचालन कर रहा है, कहीं कारखाना थोड़ी चला रहा है भगवान विष्णु, क्या दुनिया को चलाने के लिए उसने कारोबार थोड़ी भी बना रखा है? वो तो सोया हुआ है आंखें, वो योग निद्रा में दुनिया चला रहा है, पालन कर रहा है लेकिन सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, आंखें बंद पड़ी। दक्षिण भारत में जाएंगे सारे मंदिरों में भगवान विष्णु सोया हुआ मिलेगा, सभी में सोया हुआ है, कहीं उठता नहीं। एक भक्त ने अपने भाव प्रकट किए, मतलब भगवान को जब नींद आती है तब रंगनाथ में जाके सो जाता है लंबा होकर, कोई परेशानी नहीं है। भूख लगता है तो वृंदावन में भाग के आता है, मक्खन खा लेता है, नहीं भूख लगती है तो जगन्नाथपुरी में जाता है छप्पन भोग खाने के लिए। खेलने का मन करता है तो अपने भक्तों के संग वृंदावन में प्रेम आता है, और जब कहता है कि अब देखें भक्त आएंगे थोड़ा इनके लिए प्रबंध करना है, कुछ पैसा इकट्ठा करना है, तो तिरुपति चला जाता है। तिरुपति में पैसा इकट्ठा कर रहा है ना, ये भगवान के भक्तों के भिन्न भाव है भगवान की प्रति के। सोने के लिए रंगनाथ जाओ, बेफिक्र सोया हुआ है, कोई चिंता नहीं। हरे कृष्ण। कृष्ण उठ के बिस्तर से आ गया मां के सामने, मां को नहीं देखा, आ गया और आके क्या किया? क्यों आया? कारण लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी, तान स्तने काम आसाद्य, मां के स्तन का दूध पीने की कामना से। भगवान का नाम है आपत काम, कोई कामना होती नहीं है उसको, और आज मां के स्तन का दूध पीने के लिए आ गया। क्यों आया? बोला मां के स्तन का दूध पीने की कामना करके आ गया, इच्छा हो गई कि मां के स्तन का दूध पीऊंगा। मथंतीम जननीम हरि ही, हरि की जननी जो मंथन कर रही थी ना उसके पास आ गया। जननी हरि ही, हरि की जननी उसके पास आया। ग्रहित्वा दधि मंथनम, जो उस वक्त दही का मंथन कर रही थी। कल दिन मंदु जी कह रहे थे, परसों हम साथ कहीं जेल में गए थे, कि जब मां मंथन कर रही थी ना तो जो दही के मंथन का आवाज था ना, बम 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 बम, और ये कंगनी थी ना चिंग 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 चिंग, तो ये खड़ताल की तरह बज रही थी, वो मृदंग बज रही थी, मार गोविंद गोपाल गा रही थी, कीर्तन हो रहा था। अब ये भक्तों के भाव के उसका कहने का अभिप्राय था कि उसका भी आवाज आ रहा था, कंगनियों का भी आवाज आ रहा था और मां गा भी रही थी। अब कृष्ण आया, मां आंखें बंद करके गा रही थी मौज में, तो कृष्ण को देखा ही नहीं। कृष्ण खड़ा होकर बोला, भूख लगी है मां? आवाज में क्या सुनेगी? यहां कीर्तन होता है तो किसी से बात कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना, और जब वो भोंगा बजाता है तब बाहर भी नहीं कर सकते हो। अब कृष्ण को क्या करना चाहिए? तब लिखा है मां ताजे के काम को रोक दिया। कैसे रोका? बोला मंथनी को ऐसे पकड़ लिया हाथ से। अब काम जो रुक गया तो आंख खुल गई, अभी चल नहीं रहा है, मंथनी चल नहीं रही है, पकड़ लिया ऊपर से। अरे मां हंसी, मां को हंसी आ गई, अरे आ गया। मन में विचार आया, बड़ा होशियार हो गया है, कैसा ध्यान मेरा, कैसा अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर दिया, और फिर विचार आ गया, शक्ति भी बढ़ गई है, काम कस रोक सकता है ना, इतना बड़ा मैं कितनी बड़ी ऐसे मंथन करी, इसको पकड़ लिया रुक गया, बच्चे में मक्खन काम कर रहा है कुछ, ये खिला रही हूँ, इसका प्रभाव अच्छा है। तो माँ के इसी मन में भाव आ रहा है कि बच्चा अब थोड़ी बुद्धिमान हो रहा है। भगवान ने तो ऐसे लालसा दिखाई, दूध पीऊंगा, तो माँ ने मंथनी को कपड़ा ऊपर ढक दिया। वो जब मटकी होती ना, उसके चारों ओर गीला कपड़ा रखते थे मंथन के सामने, क्योंकि वो ठंडा रहे तो जल्दी मक्खन बनेगा, चारों ओर गीला कपड़ा, वो गीला कपड़े को लंबा करके ऊपर ढक दिया। मक्खी उस वक्त आ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी 4:30-5 बजे का टाइम, मक्खी उठी नहीं थी, लेकिन कपड़े को ढंग के मां ने बच्चे को गोद में ले लिया, और गोद में ले लिया, उसका भी दर्शन कर रहा है सुखदेव गोस्वामी। कहते क्या कर रहा है, तम अंकम आरूढ़म, उसको अपनी गोद में उठा लिया। और कृष्ण की उम्र कितनी है, 3 साल से थोड़ा सा ऊपर है, 3.25 साल से छोटा है, 3 साल से बड़ा है। मां ने उसको गोद में बिठा लिया दूध पिलाने के लिए। कितनी माए भारतवर्ष में 3.25 साल के बच्चों को दूध पिलाती है, कितनी माताएं, 5 साल तक जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको पद्मनी बोलते थे, उस माँ स्त्री को पद्मनी बोलते थे। 5 वर्ष तक जो अपने बच्चे को दूध पिलाए वो पद्मनी, और बीच में एक और था, फिर जो 6 महीने ही न पिला सके वो कामिनी। और जो बोतल का पिलाए वो पिशाचनी। ये नई एडिशन अभी करनी पड़ेगी। क्यों कह रहा हूं, ऐसे अनुभव से कह रहा हूं, 2-4 दिन से कहता आया हूं, कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब थोड़ा पिशाचनी कहने पर इससे पहले नाराज नहीं करता हूं मां को, लेकिन आगे चल के कह रहा हूं, अपायात स्तनम, अपना स्तन, वो पहले से ही स्तन, तो मां के स्तन में दूध तो पहले से तैयार पड़ा था, अब पहले कह चुका है सुखदेव गोस्वामी, उसकी कंचली गीली पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, दूध तो अभी बच्चे के उठने का टाइम हो गया ना। अब लिखा क्या है फिर, स्नेह स्नुतम सस्मितम ईक्षति मुखम, माँ ने क्या किया, स्तन दे दिया, स्नेह के साथ ईक्षतम देखने लगी, मुस्कुराता हुआ कृष्ण का मुख, माँ कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुख देखने लगी। भाई कोई चीज आपसे कोई मांगे, आप एकदम उसको दे दो तो मुस्कुराएगा ना, जैसे माँ ने उठाया तो बड़ा हंस खुश हो गया, और गोद में बिठा के दूध दिया तो और मुस्कुराने लगा, तो माँ को ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी, उसको देखने लगा, माँ को देखते हुए और प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगा। अब वो माँ को देख रहा है, माँ कृष्ण को देख रही है, कृष्ण माँ को, एक दूसरे को टिकटिकी बांधे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे। वैज्ञानिक कहते हैं जब दूध माँ का पीता है ना बच्चा, और माँ और बेटा एक दूसरे को देखते हैं, तब उनके बीच में एक गाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है। ऐसा गाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है कि वो बच्चा 1000 माओं में अपनी माँ को पहचान लेता है, छोटा बच्चा भी 1000 माओं में अपनी माँ के चेहरे को पहचानता है, और माँ अपने बच्चे के रोने को पहचानती है, और माँ को इतना गौरव होता है, तब कहा करती है मेरा बेटा मेरे दूध की लाज रखना, ये उसको कहने का अधिकार हुआ करता था। उस वक्त जो उसको इतना विश्वास था, वो कुंती ने ये संदेश भेजा था कि अर्जुन और भीम को कहना कृष्ण कि क्षत्रियानी जिस दिन के लिए बच्चों को दूध पिलाती है वो दिन आज आ गया, ये संदेश कृष्ण के साथ भेजा था कुंती महारानी ने। उनको गौरव हुआ करता था जब दूध पिलाती थी बच्चों को, कि हमारे बच्चे ये दूध की लाज रखेंगे, वो उस स्नेह के कारण, उस स्नेह होता था, और उस स्नेह को बच्चा कभी भूल नहीं सकता था। और माँ बच्चे दूध है, दूध है क्या चीज, माँ का प्रेम है, स्नेह है, मात्र स्नेह है जो पिघल के दूध बन जाता है। ये द्रव्य बन जाता है प्रेम माँ का। अगर प्रेम होगा बच्चे का तो 5 साल दूध आता रहेगा, वो खत्म नहीं होता था माताओं का। अब तो क्या वो मुसीबत देखने के लिए दूध निकाल के ऐसे बाहर गिरा दो और गधे का पता नहीं किसका दूध पिला दो, किसका दूध पिला दो कोई मालूम थोड़ी आपको थैली में आता किसका है, गाय का होगा भैंस का होगा घोड़े का गधे का पता नहीं कुछ मालूम नहीं किसका है। मैं झूठ नहीं बोला, ऊंट का दूध पीते हैं हमारे पास राजस्थान में लोग, ऊंट का दूध पीते हैं। अभी अरबस्तान में ऊंट का दूध पैक मिलता है, दुबई में ऊंट का दूध पैक मिलता है। मां बड़े प्रेम से दूध पिला रही है। अब किसमें दूध पिलाती है पिशाचनी क्यों बोलते हैं पता है, किसमें दूध पिलाती है बोतल में ना। अब बच्चा जब बोतल उठाएगा ऐसे मेरी प्यारी मां अरे 10 साल का होगा तो 10 रुपया लेके खड़ा होगा कोको कोला दे, थोड़ा कोको कोला क्यों पीता है, मेरा प्रेम हो गया इससे, बोतल की लाज रखनी है। सत्रह 18 साल का हो गया तो विलायती दो देसी नहीं पीऊंगा, बोतल की लाज रखनी है। और 40-45 में बीमार होके अस्पताल जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा अब बोतल की मैं लाज रखाता हूँ तुम्हारे को लगा तुम इसको देख रहे, फिर ऊपर बोतल को देख। इसलिए बोलते हैं बोतल पिलाना का मतलब है आप उसको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिस जो रास्ता अंधेरे कुएं में जाता है, नष्ट की ओर जा रहा है, ये रास्ता नष्ट की ओर जा रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति ने ये इतना गलत धारणा स्त्रियों में डाली है कि बच्चा दूध पिएगा तो तुम्हारी सुंदरता खराब हो जाएगी, बहुत गलत धारणा है। कुछ तो ऐसा शोधन किया है कि जो माँ दूध नहीं पिलाती है उसको ब्रेस्ट का कैंसर ज्यादा होता है, एक किसी को हमने ये कहते हुए सुना है। तो माताओं को बड़े स्नेह से ये यशोदा से सीखना चाहिए कि प्रेम से सब काम छोड़ के पहले बच्चे को दूध पिलाना चाहिए और प्रेम से पिलाना चाहिए, स्नेह से पिलाना चाहिए। पुराने जमाने में तो सास ऐसा ऐसा माल खिलाती थी अपनी बहू को कि इसका दूध बढ़े ताकि मेरा पोता रुष्ट पुष्ट रहे। हरे कृष्णा। अब यहां दूध पिया है आनंद लगा हुआ है, मां बच्चा दोनों खुश बैठे हुए हैं, इतने में मां की दृष्टि बच्चे से हटी, दूध पे गई। जैसे भी कोई भगवान से दृष्टि हटा के कहीं और ले जाएगा कोई ना कोई उत्पाद जरूर होगा, दृष्टि बच्चे से हटी ना, लेकिन बच्चे के लिए ही गई, इनकी मां की दृष्टि बच्चे के ही संबंध में दूसरी चीज को देखने पे गई जो दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ा होता, दृष्टि अरे उफन रहा है। मां ने बच्चे को नीचे रखा और लिखा है अतृप्तम, अरे वो तो संतुष्ट हुआ नहीं, पूरा पेट भरा नहीं, और मां उसको देख के चली गई। यहां भाव ये लिखा है कि बच्चों ने अघासुर के मरने के बाद कृष्ण का मुंह देख रहे थे भोजन खाते खाते, कृष्ण के चेहरे से मुख को हटा के बछड़ों की तरफ देखा तो कृष्ण से अलग हो गए और ब्रह्मा जी ले गया। भगवान से जैसे ही दृष्टि हटती है तो कोई ना कोई परेशानी जरूर जीवन में आती, चाहे वो हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए आए अगर हम भक्त हैं तो, लेकिन साधारण व्यक्ति का तो नहीं। लेकिन दृष्टि हटी मां की और कृष्ण को क्या हुआ, यहां लिखा है कोप, क्रोध आ गया। क्रोध किस बात के ऊपर आया, मेरे से ज्यादा दूध प्यारा है, मुझे भूखा छोड़कर चली गई। अच्छा एक सिर्फ भक्तों को एक जानकारी यहां देते हैं, प्रभुपाद ने भावार्थ में इसका लिखा है कि भक्त के लिए भगवान के सारे काम मुख्य होते हैं, लेकिन कौन पहले करना है कौन बाद में करना है ये निर्णय भक्त को करने के लिए भगवान बुद्धि देते हैं। प्रभुपाद ने यह श्लोक लिखा है ददामी बुद्धि योगम, कि कौन पहले करना चाहिए ये भगवान उसको बताते हैं, पहले क्या करो बाद में क्या करो। तो कोई काम पहले करना कोई बाद में करना है, दोनों भगवान संबंधी काम। जैसे मानो कोई पूजा कर रहा है, कोई बहुत बड़ा वरिष्ठ वैष्णव यहां आ गया मंदिर में, तो अब उसको भगवान प्रेरणा देगा कि इस वक्त वैष्णव का आदर करना चाहिए अंदर से, मानो तो माला लिया के उसको आदर करेगा। दोनों भगवान की सेवा मुख्य होती है, लेकिन क्योंकि भगवान का भक्त आ गया उसको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न ज्यादा होंगे, तो उस भक्त की ओर उसकी दृष्टि जाती है, वो भगवान को प्रसन्न करने की दी जाती है। भगवान ने तो ये कोप किया, ये तो भगवान ने एक बहुत अपना लीला की है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि मां यशोदा तो कृष्ण के लिए ही वो दूध गर्म कर रही थी ना, वो तो कृष्ण से अलावा तो उसका कोई भाव नहीं था, तो मां का कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान को मां का प्रेम और बढ़ाना था। कोप क्रोध आया, होंठ लाल होके फड़कने लगे, छोड़ के जाती है, और मिश्रा अश्रु और जूठे आंसू आंख में आए। बच्चे का जब बच्चे की आप बात पूरी नहीं करते तो पहले पहले रोना शुरू करेगा, नहीं मानती आंखें जूठे आंखें मिश्र अश्रु अश्रु मिश्र जूठे आंख में आ गए, सफेद दांतों से लाल होंठों को दबाने लगा। अब क्रोध कहां उतारे, पत्थर उठा के मटका जो पड़ा दे मारा मटके में, जिसमें मां दही मंथन कर रही थी, और सारा दही बिखर गया। ऐसे पत्थर मार के फिर देखो जाएगी ना, ये ऐसे करते वो मन में आया, लेकिन अभी इसको तो नहीं खा सकता हूं ना, ये तो नीचे गिर गया, खाऊं क्या, दूसरे कमरे में पड़ा है ना मक्खन, कोई बात नहीं, पद्म गंधा का गाय का नहीं दूसरी गाय का पड़ा तो बहुत है घर में, जाके उधर से मक्खन उतार खाने लगा। दूसरे कमर में गया, उखल उठाया, उखल के ऊपर खड़ा हो गया, मक्खन उतारा, मक्खन खाते देखे कृष्ण के उसके दोस्त तो नहीं आए उस वक्त, लेकिन बंदर सारे आ गए, अड़ोस पड़ोस से बंदर आए, कोई कौवा अंदर आ गया, एक सवेले उठ गया, कौवा सवेले उठता है आदमी नहीं उठते, इसमें लिखा है कौवा अंदर था, बंदर चारों ओर बंदर आए, कृष्ण खाओ खाओ खाओ, बंदरों को खिला रहा है उखल के ऊपर खड़ा, ये यहां ये काम चल रहा है उखल के ऊपर खड़े खड़े। मां दूध को तो थोड़ा लकड़ी पीछे किया, थोड़ा ऊपर पानी छड़का, नीचे किया, वापस लौट के आई, दधी को देखा, ऐसे किया, बड़ा चेतन हो गया, ये इसका काम है, मटका फोड़ दिया। मां हंसी, लिखा है मुस्कुराई, इसी का काम है, बड़ा चेतन हो गया। हे कहां, अब दो भाव यशोदा के मन में आए, कि है कहां, भांडा फोड़ के गया ना, इसको ताड़ना करनी चाहिए, छोटा है, ज्यादा बड़ा बनेगा तो और दिनबंद जेल में प्रवचन करते हुए बोला। मां ने बोला अभी ये यहां से भाग के गया, किसी और के घर में चोरी करके खाएगा और बड़ा होकर चोर बन के जेल में आ जाएगा, इसलिए अभी से उसको ताड़ना करनी चाहिए। और जेल के बंदियों को बताने और दूसरा भाव मां के मन में ये आया, वो स्नेह का भाव दूसरा आया, ताड़ना भी स्नेह की थी, लेकिन उससे गाढ़ भाव आया, गलती की है ना, डर गया होगा, और डर गया होगा तो कहीं भाग जाएगा, और कहीं जंगल में भाग गया तो अभी तो भूखा है ना, भूखा है तो बेचारा भूखा बच्चा भूखा जंगल में जला चला जाएगा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके ऊपर जेल में हम उनको कहते हैं, ये सरकार तुमको रोटी खिलाती है ना, 2000 रुपया तुम्हारे ऊपर खर्च कर रही है, इसलिए कि तुम बाहर जाओगे, जिसको तुम मार के आए वो गोली मार देगा, तेरा जान चली जाएगी, ये तुम्हारी रक्षा करके या बैठे चौकीदारी तुम्हारी कर रहे ये सरकार तुम्हारी चौकीदारी करती है, असल खर्चा करती घर का। तो मां ने देखा यहां तो है नहीं, गया कहां, कैसे पता लगे? पुराने जमाने में जब ये डामर के रोड नहीं हुआ करते थे, गांव के अंदर आदमी कहां गया उसके पांव देखे जाते थे कि जमीन पे पांव है, और ऐसे लोग हुआ करते थे जो पांव को पहचानते थे कि ये पांव किसका है। हमें मालूम है, पिताजी हमारे पांव पहचाना करते थे, और उस जमाने में चोरी होती थी, पुलिस उसको बुलाती थी कि पांव पहचानने वाला आए, और जाके चार पांच आदमियों को कहते यहां से जाओ, और जो एक पांव होता है ना उसको ढक के रखते थे, फिर सब खोलते थे, फिर दिखाते थे इनमें से पहचानो कौन सा पांव है, वो बताता ये वही पांव है जो उधर था। तो ऐसे चोर पकड़ा जाता था। ये पुराने जमाने में अपने ऊंट के पांव पहचानते थे, गाय के पांव पहचानते। हम जंगल में जाते थे कभी लकड़ी लेने के लिए, पिताजी पीछे जाता, बोला तुम वो उस जगह गए थे वहां से लकड़ी लाए, तुम्हारा पांव उधर पड़ा था, उनको पांव का पता लगता था। तो पांव से चोर पकड़े जाते थे पुलिस के पास, पहले उनके नाम होते थे जो वो एक्सपर्ट कौन है पांव से पहचानने वाला। तो माँ ने देखा पांव इसके कहाँ है, अरे पांव तो दही के ऊपर गया है ना, दही के ऊपर छम छम के पांव पड़े हैं, देखा पांव लेके जाए तो दूसरे कमरे के वहां से बंदर दिख रहे हैं, कौवा बाहर उद के जा रहे हैं। माने भाई होगा ना वो इधर होगा, बंदरों को जो देखा सामने, बंदरों को देखा माँ ने तो लाठी उठा ली, कृष्ण को मारने के लिए लाठी उठाई ये भाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि फेंक दी, अगर मारने के लिए तो नहीं उठाई थी। दीन बंधु ने अपने अनुभव से बताया कि वृंदावन में हम लाठी ले जाते हैं तो बंदर अपने आप भाग जाते हैं, नहीं लाठी होती है हमारे हाथ में ना तो हम ऐसे भी करेंगे ना तो भी चश्मा उतार के ले जाएगा, जेब में हाथ डालेगा ऐसे बंदर प्रेम से जैसे घरवाली कुछ निकाल ली हो, लाठी नहीं होगी तो सब कुछ कर लेगा। तो मां ने लाठी उठाई, लाठी को देख के बंदर एकदम ऊपर चढ़ गए, बंदर भाग गए, दोस्त मेरे कहां गए, ऐसे पीछे देखा मां के हाथ में लाठी, भागा वहां से कृष्ण, कृष्ण आगे मां पीछे दौड़ने शुरू हुई, मां पीछे दौड़ रही है और उस दौड़ते को देख रहा है सुखदेव गोस्वामी, उसको देखते मां की छाती भारी भरकम, मां के नितंब भारी भरकम, केल बहुत कमजोर है मां की, अब मां को आस्ते थोड़ा होना पड़ गया, लड़का आगे चला गया ये पीछे रह गई, वो इतना तेज दौड़ नहीं सकती थी, वो बच्चा ऐसे करके ऐसे पेड़ के आगे से पीछे जैसे ऐसे जा रहा है, लेकिन मां भाग रही है पीछे। तब सुखदेव गोस्वामी तो और भी बहुत अच्छा लिखा है कि जो योगियों के मन में थोड़ी देर में चिंतन में नहीं आता है उसको पकड़ने के लिए गोपी भाग रही है, और जाके पीछे से पकड़ लिया, पकड़ के लाठी का डंडा दिखाया, तोड़ा ना फटका, मटका तोड़ा है ना, हाँ तोड़ा, चोरी भी करके खिलाया बंदर को, मरकट का मित्र, बंदरों का मित्र, अभी नहीं करूंगा। यशोदा देखा है तो रो रहा है, दोनों आंखों से काजल को मल के निकाला है, सारा मुंह काला हो गया, भयभीत हो रहा है, मां ने छड़ी को फेंक दिया, छड़ी फेंक के कह दिया बांध के रखूंगी, अब नहीं जा सकते अपने दोस्तों के साथ, आज खेलने नहीं जाओगे, तुम बहुत शैतान हो गए, बांधोगी तुमको, और मां ने बांधने के लिए रस्सी उखल में बांधी, उखल भगवान से थोड़ा बड़ा था, देखो उखल बड़ा है, भगवान थोड़ा छोटा है, इसलिए उखल अटक गया और भगवान दो पेड़ के बीच से निकल गए, उखल छोटा होता तो उखल पहले निकल जाता, डिजाइन ठीक बनी हुई है ना, उखल बड़ा था, उखल में तो बांध दी, और रस्सी लेके यहां से घुमा के यहां आए, दो उंगल छोटी, दूसरी रस्सी मानो यहां अपनी पड़ी थी वो उसके बस जोड़ दी, जूड़े से निकाल के जोड़ दी, छोटी, एक और रस्सी लगा तो दासी रस्सी, तीसरी रस्सी छोटी, चौथी घर की सारी रस्सी छोटी, मोटा ये नहीं हो रहा है, इसकी कमर में सुबह सुबह तो मैं काला धागा बांधती हूं, वो तो बंद गया था, दो उंगल छोटी रस्सी और ये 100 फुट रस्सी और इसमें बांधी है, गई कहां, न रस्सी छोटी हो रही है न ये मोटा हो रहा है, आश्चर्य वो क्या रहा है। और दूसरी गोपियां खड़ी थी बोली नहीं बांधना लिखा है इसके मन, इसके इसके भाग में बांधना नहीं लिखा है, छोड़ दे यशोदा, यशोदा उनकी तरफ देख के हंसती है, दोनों आपस में हंस रहे, बोलो वो क्या रहा है, देखो बंद नहीं रहा है, और भगवान तो ऐसे अपराधी की तरह ऐसे खड़े हैं बस, अब क्या करें, भगवान तो चुप खड़े हैं, लेकिन भगवान की विभूति शक्ति जो है, ऐश्वर्य की शक्ति है, वो भगवान की संकल्प शक्ति है। भगवान ने कहा मां बांधना चाहती है, देखो देखो कैसे बांधती है। ऐसे मन में थोड़ा आया ना, जैसे बच्चे को कभी आप कहते ना तुम बांधूंगा, तो मन में देखूं कैसे बांधता हूं, ऐसे आप कहते ना बच्चे देखूं कैसे बांधती हूं, ऐसे कहते तो है ना, कहता तो है ना, कहना तो उसका स्वभाव है ना, देखूं कैसे बांधती हो। भगवान ने मन में कहा देखूं कैसे बांधती हो, तो संकल्प हो गया, संकल्प हो गया तो भगवान की शक्तियां प्रवेश हो गई अंदर, और भगवान की शक्ति विभूति प्रवेश हो गई। तो जिस भगवान के एक अंश से ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, अपनी जगह पे हिल रहे हैं, वो भगवान के अंदर प्रवेश हो गया। अब भगवान बंद नहीं रहे। अब सब स्त्रियां कहती है यशोदा छोड़ दो छोड़ दो, इसके भाग में नहीं लिखा बंदा। हंसती है मतलब क्या देखो हो गया, लेकिन फिर भी आज तो इसको बांध के रहूंगी, पूरे शहर की रस्सियां मंगा लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसको। कृष्ण अब पहले ऐसे खड़ा ना, अब देखते हैं मां को क्या बोल रही है, छोड़ेगी नहीं। भगवान ने देखा तो भगवान ने देखा मां के पसीना से चेहरे के ऊपर बहुत पसीना पड़ा, बाल बहुत काले हैं, मां यशोदा के असली काले बाल हैं। अरे कृष्णा, और काले बालों से जैसे बादल से बरसात बरसती है ना, ऐसे पसीना काले बालों से मुंह के ऊपर गिर रहा है, फूल जूड़े के सारे नीचे यशोदा के पीछे गिरते हुए आ रहे हैं, जैसे वेद के सारी ऋचाएं यशोदा के पीछे भाग रही है। अरे अरे ये नहीं बांधने वाला है, कहाँ जा रही हो माँ, कहाँ जा रही हो। वो फूल सारे पीछे गिरे हैं और लंबा सांस ले रही है यशोदा। भगवान ने ऐसे देखा ना उसको, ये कहा कि नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने यशोदा का ये चेहरा पसीने से भीगा हुआ देखा, बहुत परिश्रम से देखा, भगवान के हृदय में करुणा आ गई। मेरी माँ मुझे बांधना चाहती है, बड़ा दृढ़ संकल्प कर लिया, बड़ा परिश्रम माँ ने किया, थक गई है, अब तो बंध जाना चाहिए, अब माँ जीतेगी हम हारेंगे। ये भगवान ने संकल्प किया, संकल्प किया तो विभूति शक्ति निकल गई, करुणा शक्ति जैसे ही अंदर आती है विभूति अपने आप भाग जाती है। भगवान के हृदय में करुणा ऐसे माँ के प्रति उत्पन्न हुई, वो शक्तियां सारी विभूतियां चली गई। भगवान की योग माया ने ऐसा वहां वातावरण बनाया कि ऐसे करके यशोदा ऐसे गांठ लगाई तो गांठ लग गई, भगवान बंध गए। यशोदा लंबा सांस लिया, बांधा ना। अब भगवान अंदर से तो क्या सोच रहे हैं, बाहर से कहा मेरी माँ जो तुम चाहो वो हो सकता है, माँ वो क्या करूं। अब बंध गया, इस बंधे हुए भगवान को बंध गया। दो उंगल छोटी वाली कथा पूरी हो गई और यहां सुखदेव महाराज कह रहे हैं, ये माता का ये दर्शन लिखा है उसके बाद लिखे हैं। अब सुखदेव महाराज कहते हैं हे महाराज परीक्षित, इस पूरे ब्रह्मांड के देवता भगवान शंकर ब्रह्मा इंद्र जिनके नियंत्रण में रहते हैं, सब उसके अधीन रहते हैं, आज वो उस गोपी के अधीन हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला आज दिखा रहे हैं, ये श्लोक कहता है सुखदेव महाराज। शब्द लिखे एवं संदर्शिता, संदर्शिता है अंग हरिणा भृत्य वश्यता, भृत्य वश्यता, भृत्य मतलब सेवक अपना भक्त, वश्यता का मतलब उसके वश में आ जाता है। आज भगवान अपने भक्त में के वश में आ गया और क्या स्ववशे न अपि कृष्णे न यशेदम स ईश्वरम वशे, जिसके वश में सारे ईश्वर हैं, ब्रह्मा शंकर आदि जिसके वश में है, जो उनके इशारे के ऊपर दुनिया का काम चला रहे हैं, आज माँ ने उस बच्चे को उस ब्रह्म को बांध दिया। और तब ये श्लोक आया है, इसके बाद अभी आएगा, इसके बाद लिखा है 20वें श्लोक में आगे लिखते हैं न एमं व्रंचो न भवो, व्रंचो मतलब ब्रह्मा, भवो मतलब शंकर, ब्रह्मा शंकर न श्री और न लक्ष्मी। ब्रह्मा को शिव को और लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं है वो आज इस गोपी को क्या लिखा है, ले भीर गोपी, इस गोपी यशोदा को आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यत प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ है इसको, विमुक्ति दा बहुत विमुक्ति। वह विमुक्ति के ऊपर आचार्य ने लिखा है, प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखता है, मुक्ति का मतलब भौतिक बंधन से छुटकारा, विमुक्ति का मतलब विशेष मुक्ति। बोला विशेष मुक्ति क्या, बोला अपना प्रेम। विमुक्ति का मतलब कृष्ण प्रेम। आज तो कृष्ण प्रेम जो यशोदा को दिया है, ये बाल कृष्ण ने, वो ब्रह्मा को अलभ्य है, वो शंकर को भी नहीं और लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हो सकता है। ये क्यों कह रहे हैं, अभी समय तो बहुत ज्यादा हो गया, क्यों कह रहे हैं, इसका कारण ये है, ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था किसको, धरा को और धरा और दो द्रोण और धरा को वरदान दिया था कि तुम्हारा, तुम नंद यशोदा बनोगी। तो इस बात का खंडन करने के लिए कि धरा और यशोदा को ब्रह्मा ने वरदान दिया था, खुद ब्रह्मा को जो नहीं प्राप्त है वो धरा और यशोदा का काम प्राप्त होगा। अरे ये तो असली भगवान के नित्य परिकर यशोदा नंदोना तो गोकुल के है, इनमें धरा और द्रोण प्रवेश हुए थे केवल, उनका ये सौभाग्य नहीं हो सकता है। जो ब्रह्मा स्वयं को नहीं हो दूसरे को वरदान कहां से देगा। इस बात को केवल स्पष्ट करने के लिए श्लोक है, इस श्लोक के बाद ये श्लोक अब पढ़िए। न अयम सुख आपह भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानीनाम च आत्मभूतानाम भक्ति यथा भक्तिमताम। अब ये शब्द है, न अयम सुखापो भगवान देही नाम गोपी का सुतः ज्ञानी नाम च आत्मभूतानाम यथा भक्ति मताम इह इह, आखिर शब्द इह, ठीक है। इस श्लोक में देखिए आप कुछ शब्दों के अर्थ आते हैं क्या, न अयम सुख आपो, न अयम, अयम मतलब ऐसा, कैसा, जैसा अभी यशोदा को सुख मिला है, आप ऐसा सुख नहीं मिलता है। किसका ऐसा सुख नहीं मिलता है, बोला भगवान का। किसको नहीं मिलता है, पहला क्या है, देही नाम, जो अपनी देही को ही सुखी करने के लिए भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा घर धंधा दुकान मकान चले, पुत्र आदि की प्राप्ति हो, ऐसे कर्म के फल की इच्छा वाले जो है देही के ही सुख के लिए भगवान के पास सब आते हैं, उनको ऐसा सुख नहीं मिलता है। दूसरा क्या शब्द है, ज्ञानी नाम च, और जो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की प्रयास करते हैं वो भी शरीर के बंधन से ही तो मुक्त होना चाहते हैं ना, तो ये भी देही नाम में आते हैं ना, इसलिए उनको भी ये सुख प्राप्त नहीं है। तीसरा है आत्मभूतानाम, आत्मभूतानाम मतलब प्राणियों में जिनमें किसी में कोई उनको इच्छा नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है, ऐसे योगी लोग, उनको भी अपने आप में संतुष्ट है ना, उनको भी ये प्राप्त नहीं है। तो किसको प्राप्त है, भक्ति मताम इह, इधर इस दशन संसार में केवल भक्तों को ये सुख प्राप्त है और ये सुख किसी को नहीं मिलता है। ये श्लोक का अर्थ है, और इस श्लोक के अर्थ में प्रभुपाद ने विशेष रूप से लिखा है, शब्द अर्थ में प्रभुपाद ने एक चीज लिखा है वो बड़ा, गोपी का सुतः, गोपी का सुतः, गोपी का सुत कृष्ण है, वसुदेव, देवकी और वसुदेव की बेटी का नाम वसुदेव है, गोपी का सुत का नाम कृष्ण है, ये दो बालक अलग पैदा हुए हैं। देवकी और वसुदेव के पास भगवान चार हाथ के रूप में वसुदेव कृष्ण प्रकट हुए हैं, ऐश्वर्य संपन्न है, वसुदेव और देवकी ऐश्वर्यमयी भक्ति करते हैं। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन के रूप में, नंद नंदन के रूप में प्रकट हुए। इसलिए भगवान ने जब देवी को कहा कि तुम मेरी अनुजा होके प्रकट होना यशोदा के बाद, अनुजा का मतलब छोटी, तो इसका मतलब बड़ा भाई होगा ना। इसलिए जब वसुदेव कृष्ण को लेके गोकुल गए रात को 12 बजे, तो उन्होंने तो केवल कृष्ण को रखा, वसुदेव कृष्ण को रखा हुआ और लड़की को उठाया। ये वसुदेव कृष्ण यशोदा नंदन गोपी का नंदन के अंदर प्रविष्ट हुए और वो एक हो गया। और 11 साल 9 महीने के बाद, तकरीबन 11 साल कुछ के बाद, जब नंद गांव से अक्रूर लेके कृष्ण को गया और अक्रूर घाट के पास आके जब यमुना में स्नान किया, तब ये गोपी का कृष्ण तो वृंदावन में रह गया, वसुदेव कृष्ण वहां से आगे चले गया मथुरा और द्वारका। गोपी का कृष्ण वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं निकालता है, एक कदम भी बाहर नहीं निकालता, सदा वहीं रहता है, उससे बाहर उसकी ये लीला है ही नहीं। तो ये गोपी का सूत्र विशेष है। और प्रभुपाद ने भावार्थ में लिखा है, बाकी सभी भगवान की ही उपासना करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये सब शांत भक्त है। शांत पांच भक्त होते हैं, पांच प्रकार का भाव, शांत, दास्य, सखा, वात्सल्य, माधुरी, ये शांत भक्त है जो भगवान का कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, ये सब शांत भक्त है। महाप्रभु ने केवल चार ही भाव स्वीकार की है, शांत भाव को बाहर कर दिया है, दास्य, सखा, वात्सल्य।